समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, न कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोहे हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन में अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और अपने मनोरथों को सिद्ध करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सप्ताह की इस अंतिम और ओजपूर्ण सुबह में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हार्टफेल्ट हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल यस, वी आर स्टार्टिंग विद दैट ब्यूटिफुल थॉट दैट मुकेश जस्ट शेयर विद अस। वेल यस, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स, सो इफ यू विन द मॉर्निंग You win the day.
Ji.
So we are starting with our program, listeners. This is Aaj Savere with me, Shagun Chopra and Mukesh. Ji. Again, first, Ji. Let's give a brief description to our listeners. We will give you the latest national and international news. We'll provide you Metro City updates and historical information, which is related to today. Today, it's 31st of August, 2025, listeners. So there is a lot that you have to look forward to with us. So stay with us for the next 30 minutes.
Ji. अब नजर डालते हैं कार्यक्रम में अब तक के मुख्य समाचारों पर।
जी, द 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO विल बिगिन टुडे इन तियानजिन, चाइना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन तियानजिन टू पार्टिसिपेट इन द समिट। द टू डे डेलिब्रेशंस आर बीइंग अटेंडेड बाय टॉप लीडर्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज एंड हेड्स ऑफ 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Well, this is the fifth time that China is hosting the SCO summit, which will be chaired by President Xi Jinping. Under China's chairmanship, the year 2025 has been declared as the SCO year of sustainable development. More from our correspondent.
With the theme Upholding the Shanghai Spirit, SCO on the Move, the two-day Shanghai Cooperation Organization Summit will begin today in Tianjin. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tianjin yesterday to attend the summit, where he was accorded a grand welcome from the airport to the hotel. People turned out in large numbers, eager to greet and meet the Prime Minister. On the occasion, Chinese origin artists trained in Indian classical music by renowned Indian musicians presented soulful renditions accompanied by Indian instruments, making the welcome ceremony truly memorable. The summit will review SCO's achievements over the past 25 years, adopt a 10-year development strategy, and deliberate on crucial issues such as regional security, connectivity, sustainable development, counter-terrorism, and cultural cooperation. Prime Minister Narendra Modi's active participation is expected to further strengthen India's role and give fresh momentum to cooperation and solidarity among SCO member states. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Tianjin.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज स्ट्रेस्ड दैट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इज नॉट मेयरली एन ऑप्शन बट अ कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। ही सेड द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट सेल्फ रिलायंट इंडिया can safeguard its strategic autonomy. The minister said this while speaking during a defense conclave in New Delhi yesterday, describing Sudarshan Chakra mission as a game changer for the country's future security. The minister said the mission is aimed at providing complete aerial protection to critical locations across the country using both defensive and offensive technologies. He underlined that Operation Sindoor has highlighted the importance of air defense in modern warfare. Well, the next story is very interesting. Listeners, the fifth edition of the ASEAN India Youth Summit will conclude today. The summit, which is being organized by the Ministry of External Affairs in collaboration with the India Foundation and the ASEAN Foundation, with the support of the state government of Goa. The theme, listeners, of the summit is Connecting the Youth, Shaping Our Future. The inaugural ceremony of the summit was addressed by Union Minister of State for External Affairs and Textiles, Pabitra Margarita, on 28th of August, 2025.
श्रोताओं, यमन के हुती गुट ने कहा है कि इस सप्ताह के शुरू में राजधानी सना पर हुए इजराइल के हवाई हमलों में हुती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और अन्य मंत्री मारे गए। हूतियों ने संकल्प लिया है कि सरकार काम करना जारी रखेगी और जल्द ही इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रहावी की मौत की खबरों के बावजूद हूती गुट ने बृहस्पतिवार के हमलों में किसी के हताहत होने की खबर से इंकार किया था। हूतियों ने वर्ष 2014 में सना पर कब्जा कर लिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को अदन में निर्वासित होना पड़ा। इस सप्ताह की शुरुआत में इजराइल ने सना के कई इलाकों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 102 अन्य घायल हो गए। और अगर खेलों की बात करें श्रोताओं, तो कजाकिस्तान के शिमकंद में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चैंपियनशिप में पहली बार 50 स्वर्ण पदक जीतकर भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने 26 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक जीते। कजाकिस्तान दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। भारत के अंकुर मित्तल ने कल अंतिम दिन पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। सीनियर टीम के शानदार प्रदर्शन में एना वेलिन वाला रिवन का महिला एयर राइफल में एशियाई रिकॉर्ड के साथ दूसरा एशियाई खिताब भी शामिल है। श्रोता, उन्होंने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में अर्जुन बाबूता के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए एशियाई चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। और सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में अपना पहला एशियाई खिताब जीता, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का खिताब बरकरार रखा। मनु भाकर ने 3 कांस्य पदक जीते। और अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने देश के विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को श्रेय दिया। इंदौर के रंगवासा गांव में सरकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान संतृप्ति शिविर को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने 11 वर्ष पहले बैंकों के सहयोग से जनधन योजना शुरू की थी। इससे पूरे देश में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ खाते खोले गए, जिससे उन्हें बचत, पेंशन, बीमा, ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले भाग में अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का।
जी,
सबसे पहले हाल दिल्ली के समाचारों का। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली के खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। कल दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय खेल ढांचा, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, लगातार सहयोग और खिलाड़ियों को 7 करोड़ रूपये तक की पुरस्कार राशि के साथ सरकारी सेवा के माध्यम से सम्मान दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित ऑप्टिक्स मेले में भाग भी लिया। 3 दिन के इस मेले का आयोजन ऑप्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मसूदपुर, बिजवासन और द्वारका में 5 एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने द्वारका सेक्टर 29 और बिजवासन में डॉग शेल्टर के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य दिल्ली में पशु कल्याण और नागरिक हित दोनों के लिए प्रभावी कदम उठाना है, जिससे कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निजात पाया जा सके। और अब रुक करते हैं मुंबई की तरफ। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि राज्य सरकार ई बाइक टैक्सी नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि संबंधित संगठनों को लाइसेंस प्राप्त कर अपनी ई बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटर परिवहन विभाग रैपिडो, ओला, उबर जैसी कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेगा, जो सरकारी आदेश के बावजूद बिना लाइसेंस के बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित कर रही हैं। श्री सरनाइक ने कहा कि नागरिकों से मुंबई महानगर क्षेत्र में बिना लाइसेंस के बाइक टैक्सी सेवाएं चलाने की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त होने तक ऐसी सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया और संबंधित कंपनियों ने इस संबंध में एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया है। अगर मुंबई की महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने तालुका स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में वंशावली समिति का कार्यकाल अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ये समिति मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों, विशेष रूप से कुनबी मराठा, कुनबी और कुनबी मराठा जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने यह सरकारी निर्णय जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा प्रदान करना है। और कोलकाता मेट्रो रेलवे प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की विविध सेवा परीक्षा के बीच आज दक्षिणेश्वर स्टेशन और महानायक उत्तम कुमार स्टेशन के बीच ब्लू लाइन पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मेट्रो सेवाएं आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई हैं। अप और डाउन लाइनों पर 130 की बजाय कुल 138 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। श्रोताओं, अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार के लिए चलते हैं शगुन के पास।
Yes, Mukesh, now we are heading to Chennai first, listeners. The Indian Maritime University hosted a dialogue session which was titled Transforming Indian Ports, Capacity Building, Sustainability and Digital Innovation. This event was a prelude to the mega global event planned by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India Maritime Week 2025 and the proposed Port-led Regional Development National Conference to be held in November 2025 this year. The meet focused on India's Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kal Vision 2047, which aims to elevate the country's ports to global standards. I have another update from Chennai only. The Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences, Government of India, in collaboration with the National Disaster Management Authority, organised a conclave on marine multi-hazard services for the Indian coastline in Chennai. This was done on Friday. Another update from Chennai again. National Institute of Open Schooling signed an MOU with Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University to create skilled manpower in the field of livestock and poultry and allied sectors. Addressing the media in Chennai, the chairman of NIOS, Professor Akhilesh Mishra, said that the objective of this agreement is to provide vocational training through certificate and diploma courses. Let's now head to Bengaluru, listeners. Karnataka State Governor Thavarchand Gehlot presented the President's Distinguished Service Medal, President's Commendable Service Medal and the Union Home Minister's Medal to police officers and personnel at the President Medal Investiture Ceremony organized by Karnataka Police Department at Rajbhavan yesterday. Congratulating the officers, decorated with the medals, the governor described the ceremony as a mark of respect to the police personnel and also as a reflection of the deep faith and gratitude held by society towards its guardians. He acknowledged the indomitable courage, exemplary service spirit and outstanding efficiency demonstrated by the officers who were honored. Listeners, I'll provide you the updates of Hyderabad now. The Telangana State Cabinet has decided to amend the state's Panchayat Raj Act of 2018 to allow the state to exceed the 50% cap on overall reservations in rural local body polls. The polls are scheduled to be held in September After the cabinet meeting, state BC Welfare and Revenue Ministers P. Prabhakar and Srinivas Reddy informed the media in Hyderabad. Well, he said the government is committed to implement 42% reservations for backward classes. In the 2018 Act, the previous government in the state had capped reservations at 50% in line with the Supreme Court's overall cap over reservation.
आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम के हाल को जानने का। तो सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की। श्रोताओं, इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में भी आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रोताओं, कोलकाता में भी आज ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम, शगुन से।
यस मुकेश, इट इज मच द सेम आई वुड से इन अदर सिटीज एज वेल एंड आई विल बिगिन अगेन लिसनर्स विद चेन्नई। Chennai is expected to have a partly cloudy sky, as I said, and there is a possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum it will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad again is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius there.
जी, श्रोताओं, ये था देश के कुछ महानगरों के मौसम का हाल।
जी,
और अब बात करते हैं आज के विशेष दिन की। श्रोताओं, आज राधा अष्टमी है।
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
भाद्रपद मास। श्रोताओं, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री राधा जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं। वेदों और पुराणों में जिन्हें कृष्ण वल्लभा कहकर संबोधित किया गया है, वे श्री राधा देवी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय थीं। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्री राधा जी संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसीलिए इन्हें श्री राधा कहा गया है।
सो यस, इट इज अ ब्लेसिड संडे एंड दैट मेक्स प्लेंटी ऑफ रूम फॉर अ लॉन्ग एंड हार्टफेल्ट स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन आई वुड से फॉर आवर लिसनर्स।
जी,
Now listeners, let's take you way back in time.
जी.
We are starting our history section
जी.
with the year 1897. Well, Thomas Edison received a patent for the kinetograph, one of the first movie cameras. Well, working with his assistant William Dixon, he wanted to create a way to capture moving images, and after many tests and ideas, they built a device. This was a kinetograph that could record short films on strips of films.
जी. श्रोताओं, रेडियो प्रसारण के लिहाज से आज का दिन भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1920 में आज ही के दिन अमेरिका के डेट्रॉयड शहर में पहली बार रेडियो पर समाचार प्रसारित किए गए थे।
In the year 1955, now the first solar-powered car was demonstrated by William G. Cobb of General Motors. He built a tiny 15-inch model called the Sun Mobile that ran using energy from the sun. Well, solar cells on the car, they turned sunlight into electricity, which powered its motor. When he showed it at a car show in Chicago, people were amazed. It was small, but it proved that sunlight could make a car move. And this tiny invention sparked big ideas for the future.
जी, 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन राज्य पुनर्गठन विधेयक को भी मंजूरी दी थी।
In the year 1972 now, India passed the Wildlife Protection Act, well, to protect animals and plants from extinction. Well, it banned hunting, created national parks and allowed strict punishment for harming wildlife.
जी,
Listeners, this law was a major step in saving endangered species like tigers and elephants. It helped protect India's rich biodiversity and ensured wild animals could live safely in their natural habitats. How wonderful is that?
श्रोताओं, 1962 में आज ही के दिन कैरेबियाई देश टोबैगो और त्रिनिदाद को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों कैरेबियाई देशों की यात्रा की थी और इस दौरान भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच सहयोग और रक्षा संबंधी मुद्दों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर हस्ताक्षर हुए।
राइट
जी। श्रोताओं, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार हो रही तरक्की के लिए भी आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज ही के दिन 1968 में भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था और 1983 में आज ही के दिन भारत के उपग्रह INSAT-1 भी को भी अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रक्षेपित किया गया था। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
मच अवेटेड सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम।
जी, तो श्रोताओं, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं, सबसे पहले आज पुण्यतिथि है प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर की। उन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से अधिक किताबें लिखी। उनकी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने 8 दशक तक उर्दू और हिंदी साहित्य में अपना अतुलनीय योगदान दिया। 1940 के दशक में उन्होंने लिखना शुरू किया। वे लगभग 3 दशक तक हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर रहे। उन्होंने लंबे समय तक हरियाणा के शिक्षा विभाग और बाद में चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में भी अपनी सेवाएं दी। उनके उपन्यास कर्मावली पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से अधिक नाटक आयोजित किए हैं। बाद में इसी पर दूरदर्शन ने भी एक धारावाहिक बनाया। उनके लेख पहली बार लाहौर की एक मैगजीन में छपे। पेश है उनकी गजल से ये कुछ पंक्तियां। ये और बात है कि हवा के आगे रखे हैं, चिराग रखे हैं जितने जला के रखे हैं, नजर उठा के उन्हें एक बार तो देख लो, सितारे पलकों पे हमने सजा के रखे हैं। करेंगे आज की शब ये सोचना होगा, तमाम काम तो कल पर उठा के रखे हैं। उन्हें फसाने कहो, दिल की दास्ताने कहो, ये आईने हैं जो कब से सजा के रखे हैं। तुम्हारे दर के सवाली बने तो कैसे बने, तुम्हारे दर पे तो कांटे अना के रखे हैं, तुम्हारे दर पे तो कांटे अना के रखे हैं।
वेल, वंडरफुल लाइंस अनडाउटेडली। Let's move on now. I will now talk about Wilhelm Wundt. We are remembering him today. Physiologist, philosopher and professor and one of the fathers of modern psychology. Well, he distinguished psychology as a science from philosophy and also biology and was the first person to call himself a psychologist. He is widely regarded as the father of experimental psychology. Well, I was talking about Wilhelm Wundt.
जी. श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है साहित्यकार विजय शंकर मल्ल की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के लखनौर गांव में हुआ। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर, काव्य समीक्षक और अध्यापक रहे। विजय शंकर मल्ल ने भारतेंदु काल के गद्य को हंसमुख गद्य की संज्ञा दी। इन्होंने पहली समीक्षात्मक पुस्तक हिंदी में प्रगतिवाद से लिखी थी।
Now, let me talk about a musician now for you all listeners. Well, I am talking about Walter William Max Bygraves. Well, he has been a comedian as well, a singer, actor and a variety performer. He appeared on his own television shows, sometimes performing comedy sketches between songs. The song which I have chosen for you listeners, this is Tulips from Amsterdam.
Spring again, I'll bring again tulips from Amsterdam. With a heart that's true, I'll give to you tulips from Amsterdam. I can't wait.
श्रोताओं, आज जयंती है प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम की। उन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में से एक माना जाता है। अमृता ने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से एक थीं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अमृता उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं जिनका पहला संकलन 16 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुआ। विभाजन की विभीषिका पर इनके उपन्यास पिंजर पर एक फिल्म में भी बनी थी जो खासी चर्चा में रही। अमृत लहरें, जिंदा जिया, ट्रेल धोते फूल, ओ गीत वालियां, बदलम दी लाली उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में से एक हैं। अमृता ने कैली, कामिनी और अनीता, ये कलम ये कागज ये अक्षर, न राधा न रुक्मिणी, जलते बुझते लोग और जलावतन जैसे उपन्यासों से भी खासी प्रसिद्धि पाई। उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पेश है पंजाबी भाषा में लिखी गई उनकी लोकप्रिय कविता मैं तैनू फेर मिलांगी की कुछ ये पंक्तियां। तो कविता श्रोताओं कुछ यूं है, मैं तैनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखियल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बनके खामोश तैनू तक दी रवांगी, जा खौरे सूरज दी लौ बनके तेरे रंगा विच घुलांगी, जा रंगा दिया भावां विच बह के तेरे कैनवास नू भुलांगी, पता नहीं किस तरह पर मैं तैनू जरूर मिलांगी।
Heartfelt lines, I would say. Very emotional touch to that, those lines which Mukesh shared with us, listeners. Now, let me talk about an Indian mathematician, S.S. Pillai. Well, he specialized in number theory and his contribution to Waring's problem was described in 1950 by K.S. Chandrasekharan as almost certainly his best piece of work and one of the very best achievements in Indian mathematics since Ramanujan. And his story is now part of the folklore of mathematics, but there was another number theorist who could have followed in Ramanujan's footsteps, but remains relatively unsung. I am talking about S.S. Pillai. Well, he left back 76 excellent research articles in mathematics, which were compiled into a book, Collected Works of S.S. Pillai. So, let me now share about a musician here, a composer, vibraphonist, percussionist and band leader. I am talking about Lionel Liu Hampton. And there is a song which particularly he has composed. This is called Lavender Coffin. So listen in, listeners. Well, he worked with jazz musicians from Teddy Wilson to Benny Goodman and Buddy Rich to Charlie Parker to Quincy Jones. And Quincy Jones is responsible, listeners, for producing songs for Michael Jackson. जी. So, a big name there.
जी. श्रोताओं, आज जयंती है मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत की। इन्होंने लेखन की शुरुआत प्रारंभिक कविता से की, लेकिन गद्य लेखन में भी इनकी गहरी रुचि थी। 27 वर्ष की उम्र में ही इनका पहला मराठी उपन्यास मृत्युंजय प्रकाशित हुआ, जिससे उन्हें खासी लोकप्रियता मिली। इसका अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं में हुआ। लड़त, शला का साज, अशी मने असे नमूने, मोरवला और युगंधर उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। उन्हें साहित्य अकादमी और मूर्ति देवी पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्रोताओं, आज जयंती है बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष की। उनकी फिल्मों ने 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। घोष ने विज्ञापन की दुनिया से अपना सफर शुरू किया और जल्द ही फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। अपने 19 वर्ष के फिल्मी करियर में ऋतु पर्णो घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन किया। हिरेर आंगटी, उनिशे अप्रैल, रेनकोट, द लास्ट प्लेयर, अबो हुमन, चोखुर बाली, चित्रांगदा, सनग्लास उनकी प्रमुख फिल्में हैं।
भूमि पर वाज फिरता है बांसुरी बजा, मथुरा नगर
Listeners, today we are also remembering musician Jerry Reed, well, singer, guitarist, composer and a songwriter, and he is also an actor. He appeared in more than a dozen films. I have selected a song which you will definitely like, listeners, so listen in.
And a short time to get there, I'm eastbound just like no bandit run. Keep your foot hard on the pedal, some never mind them brakes, let it all hang out cause we got.
श्रोताओं, आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Well, listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. We thank you so much, listeners, for tuning in, and we hope you have a superb day ahead. Namaskar.